ओम ज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम वंशी विभूषित करा नवनीर लाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने यस्या कदापि वसनं चलखेलनोत्थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी योगी मधुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभा नुभो दिशे यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन यहां पर किया गया है, बहुत सुंदर आयोजन है और साथ ही साथ परम पवित्र दिन भी है। आज से कुछ ही दिन के बाद देवी काली के द्वारा महिषासुर नाम के असुर का वध होगा। इस दुनिया की आसुरी शक्ति का विनाश कुछ दिन के बाद निश्चित होगा, इसलिए भारतवर्ष में सब लोग देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि, गरबा इत्यादि करते हैं। वास्तव में जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान यहां पर अवतार लेते हैं। इसी प्रकार की घटना बहुत बहुत वर्ष पूर्व भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया में क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु के कान से कुछ मैल निकला। भगवान के कान से जो मैल निकला, वह मैल ही दो असुर का स्वरूप धारण कर लिए और उस असुर का नाम हुआ मधु और कैटव। और ये असुर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए पीछे पड़ गए। अब असुरों का स्वभाव होता है साधुओं को, भक्तों को परेशान करना। पद्म पुराण में कहा गया है द्वे भूते लोकेस्मिन, इस संसार में, इस संसार के प्रारंभ से ही दो प्रकार के लोग रहते हैं। द्वे भूते लोकेस्मिन देव आसुरैव च, एक प्रकार के लोग को देवता कहा जाता है और दूसरे प्रकार के लोगों को असुर कहा जाता है। और हमारी भाषा में एक प्रकार के लोगों को आस्तिक कहते हैं और दूसरे प्रकार के लोगों को नास्तिक कहते हैं। तो दो प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं। प्रश्न उठे, आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं? तो कहते हैं विष्णु भक्त सुरा प्रोक्ता। भगवान श्री विष्णु के जो भक्त है उसे देवता कहा जाता है। जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, जो अपने मन में और बुद्धि में यह सोचता है कि नहीं, भगवान नाम की कोई वस्तु है और उस भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, उसे आस्तिक कहते हैं या देवता कहते हैं। और जो लोग भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, उसे असुर कहते हैं, नास्तिक कहा जाता है। तो भगवान के कान से दो असुर प्रकट हुए, मधु और कैटव। ब्रह्मा जी को मारने के लिए उसके पीछे पड़े, परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी को मारने गए तो भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और वह शक्ति ने इस मधु और कैटव के साथ धमाधार युद्ध किया। वास्तव में वह शक्ति और कोई नहीं, वह शक्ति देवी काली थी। महाकाली का अवतार, महाकाली का जन्म भगवान विष्णु के रूप स्वरूप से हुआ है। केवल महाकाली ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी देवता हैं, इस दुनिया के जितने भी जीव हैं, ये सब भगवान से प्रकट होते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वह जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, कोई भी क्यों न हो, समस्त जीव की उत्पत्ति भगवान से हुई है। और यहां तक हम जिस देवता की पूजा करते हैं, वह 33 करोड़ देवता भी भगवान से प्रकट होते हैं, चाहे वह गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, काली हो, या इंद्र हो, या ब्रह्मा हो। हमारे पुराणों में, शास्त्र में और गीता में वर्णन है, ये सब भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु से। तो भगवान से विष्णु से महाकाली प्रकट हुई और प्रकट होकर धमाधार युद्ध किया। और आगे चलकर यह कथा आती है कि इसी काली ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया। महिषासुर का नाम था और स्वभाव से असुर था, इसलिए महिषासुर कहा जाता है। तो ये बहुत बहुत कथाएं हैं और यह युद्ध का दिन चल रहा है, क्योंकि आसुरी शक्ति का नाश होने जा रहा है, इसलिए सब लोग प्रेम से देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा गाते हैं, गरबा गाते हैं। वास्तव में ये जितने भी कार्य है, चाहे गणेश उत्सव हो या नवरात्रि हो, ये सब देवताओं के को प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जाते हैं। हम गणपति जी को क्यों लाते हैं? उनको प्रसन्न करने के लिए। हम गरबा क्यों गाते हैं, गरबा क्यों खेलते हैं? माता जी को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रायः यह कार्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु आज इस समाज इतना अधोगति की ओर जा रहा है, इतना दुर्गति की ओर, पतन की ओर जा रहा है। लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने की बात दूर रही, अपने को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, स्वयं खुद आनंद का प्राप्त करने के लिए यह सब उत्सव मनाते हैं। वास्तव में आज यह धर्म के नाम पर केवल पाप हो रहा है। आप देखिए, उत्सव है नवरात्रि का और गरबा खेलते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, परंतु गाते हैं क्या? फिल्म के गाने। फिल्म के गाने गाकर माता जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। प्रायः हमारे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाते हैं तो गणेश उत्सव में फिल्मों के गाने बजाते हैं, ताश खेलते हैं, विसर्जन के समय शराब पीते हैं। क्या यह सब कार्य से देवी देवता प्रसन्न होंगे? यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो यह कार्य देवताओं को प्रसन्न करना है, परंतु हम जिस प्रकार से यह उत्सव मनाते हैं, क्या इससे देवी देवता प्रसन्न होते होंगे? आप लोग इस बात को समझो या न समझो, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति था, उनके घर पर एक मेहमान आए। जैसे ही मेहमान उस व्यक्ति के घर पर एंट्री किए, तुरंत ही इस व्यक्ति ने अपना टेप का वॉल्यूम था फुल कर दिया और इतना जोर जोर से उसमें गाने बजने लगे और वह नाचने लगा। तो मेहमान आकर खड़े हैं, देख रहे हैं, और यहां पर वह व्यक्ति इतना नाच रहा है, इतना नाच रहा है और टेप इतना फुल है। तो वह नया जो घर पर मेहमान के रूप में आया है, वो तो सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। परंतु नाचने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि ये जो मेरे घर पर आया है, मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होता होगा। वह मेहमान आकर बैठा, कुछ समय के बाद ये बेडरूम में गया नाचते नाचते और शराब का बोतल लेकर आया और जोर जोर से नाचते नाचते शराब पीने लगा। और इसके मन में यही है कि ये जो घर पर आए हैं, ये बहुत खुश हो रहे हैं। और उतने में उनके दो चार मित्र आए और वे भी शराब का बोतल पी पी कर नाचने लगे और जोर जोर से टेप बज रहा है, गाने बज रहे हैं फिल्म के। चार लोग आए तो चार लोग फिर ताश खेलने लगे। और ताश के साथ मांसाहार करने लगे। तो इस प्रकार से जोर से कोलाहल वहां पर हो गया। तो कथा को आगे नहीं बढ़ाता हूं, केवल मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ऐसे व्यक्ति के घर पर वो जो मेहमान आया है, क्या वो खुश होगा? कितने लोग मानते हैं कि वह मेहमान खुश होंगे? हाथ ऊपर कीजिए। एक साधारण मेहमान, एक साधारण मनुष्य भी ऐसी स्थिति में खुश नहीं होगा। तो मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ है देवतागण, चाहे माता जी हो या गणपति जी हो। मनुष्य से बहुत बड़े हैं और मनुष्य से बहुत शुद्ध हैं। जब साधारण मनुष्य ऐसे घर पर जाने में ठीक नहीं लगेगा उसे, तो देवी देवता वहां पर कैसे जाएंगे? तो आज हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे वह आदमी अपने घर पर जो कार्य किया वही कार्य हम यहां पर करते हैं। यहां तो ठीक है, यहां तो माता के गाने बजते हैं, लेकिन प्रायः कई जगह पर ऐसा होता है। तो वास्तव में आज धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है। धर्म को लोग भूल गए हैं। धर्म का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन लोग भगवान को प्रसन्न करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखना चाहते हैं। आप देखेंगे यहां पर कई सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़े बड़े नवरात्रि के उत्सव होते हैं, हजारों लोग वहां पर जुटते हैं, हजारों हजारों रुपए के पासिस होते हैं वहां एंट्री करने के। तो वहां से हजारों लोग जब डांडिया खेलकर निकलते हैं तो पूछिए माता जी ने कौन सा ड्रेस पहना था, किसी को नहीं पता। वहां पर स्टेज बहुत बड़ा होता है, परंतु माता जी का मंदिर किसी कोने में होता है। उत्सव है नवरात्रि, गरबा खेलने गए हैं, लेकिन फिल्म का गाने के अलावा कुछ नहीं होता। माता जी ने कौन सा ड्रेस पहना है वह नहीं पता होगा, परंतु दो तीन लड़कियों ने क्या पहना है यह सब कुछ पता होगा, उनका एड्रेस भी पता होगा। वास्तव में यह सब भगवान और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य हैं, परंतु लोग अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं। और अपनी इंद्रियों को प्रसन्न इसलिए करते हैं क्योंकि वे शास्त्र को नहीं जानते हैं। लोगों को पता नहीं है भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। लोगों में इतना अज्ञान भरा है कि यह भी नहीं जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को हम कैसे खुश रखें। यदि भगवान को खुश रखना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान जो चाहते हैं वह हमें करना चाहिए। हमारे मनमाने ढंग से हम कुछ भी करने लगेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की क्या चाह है, भगवान की क्या इच्छा है, वह हमें जानना चाहिए। और भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं, ये सब भगवान ने अपने ग्रंथ, अपनी वाणी भगवत गीता में बताया है। ये भगवत गीता ग्रंथ में आया तो यहां पर रखा हुआ था। भगवत गीता को आज सब लोग जानते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवत गीता को ठुकरा सके। भगवत गीता के ऊपर सबको विश्वास है और करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवत गीता के 700 श्लोक भगवान के मुख से निकले हुए हैं। इसलिए इस ग्रंथ को, इस भगवत गीता के उपदेश को कोई काट नहीं सकता है। आज हमारे देश में अदालत में, कोर्ट के कटेरे में यदि किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाए तो उसे सच बोलने के लिए, सच्ची गवाही देने के लिए भगवत गीता की कसम खिलाते हैं। यह विश्वास है कि गीता के ऊपर हाथ रखकर कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। तो भगवत गीता के ऊपर सबका विश्वास है। भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है और इस भगवत गीता में मनुष्य जीवन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में बहुत सुंदर कहा गया है। तो वैसे तो भगवत गीता बहुत बृहद है, इसे पढ़नी चाहिए। आज केवल भगवत गीता के हम एक श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। वैसे गीता के एक श्लोक को लेकर आप अपना जीवन बिता देना चाहो तो जीवन बीत जाएगा। एक डेढ़ दो घंटा काफी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत बहुत कहा है। भगवान ने हम जैसे मनुष्यों के लिए बहुत बहुत उपदेश दिए हैं, परंतु उस बहुत बहुत उपदेशों में हम केवल एक श्लोक के ऊपर दृष्टि करेंगे, और वह श्लोक 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान समसिद्धि परमां गता। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हुए इस भौतिक जगत के, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार के दो गुण बता रहे हैं। हम जिस जगह में रह रहे हैं, यह जगह कैसी है, सबसे पहले यह हमें जानना चाहिए। तो इस जगत के दो गुण हैं, और गुण बताने वाले कौन है, साक्षात भगवान। जिसने यह जगत बनाया है वह व्यक्ति बताने जा रहा है कि यह जगत कैसा है, और कृष्ण के अलावा यह ठीक तरीके से कोई बता भी नहीं पाएगा। उदाहरण के तौर पर यह आहूजा कंपनी का माइक है। यदि मैं आपको पूछूं कि इस माइक के बारे में सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, इस माइक के बारे में सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ मैं भी जानता होऊंगा, परंतु आहूजा जिस कंपनी ने यह माइक बनाया है, उस आहूजा कंपनी से ज्यादा इस माइक के बारे में कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि इस आहूजा कंपनी ने यह माइक बनाया है। ठीक उसी प्रकार इस जगत के बारे में सबसे ज्यादा जो जगत बनाए हैं वही जानते हैं। और उपनिषद कहती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से यह जगत प्रकट हुआ है। इस जगत को बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा इस जगत के बारे में कोई नहीं जान सकता है। और जगत बनाने वाला इस जगत के दो गुण बता रहे हैं, क्या? तो सबसे पहले कहते हैं कि यह जगत अशाश्वतम। हे अर्जुन, इस जगत का पहला गुण है कि यह जगत अशाश्वत है। अशाश्वत का अर्थ होता है नाशवंत, अर्थात इस जगत का एक ना एक दिन एंड है, एक ना एक दिन यह जगत का प्रलय हो जाएगा, एक ना एक दिन यह जगत नष्ट हो जाएगा, और इस जगत में रहने वाली सभी वस्तु नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यह जगत नित्य बना रहेगा, और ऐसा नहीं है कि इस जगत में जितनी भी वस्तु है वह नित्य बनी रहेगी। यह जगत का नाश है, और इस जगत से पैदा होने वाली सभी वस्तु का नाश है, नाश्वतम। ये पहला गुण है। और इस जगत का दूसरा गुण क्या है, कहते हैं दुखालयम। हे अर्जुन, यह जगत का दूसरा गुण यह है कि यह जगत दुखालय है। दुखालय का अर्थ होता है यह जगत दुखों का सागर है। आलय का अर्थ होता है समुद्र। जैसे समुद्र में, सागर में केवल पानी ही होता है, पानी के अलावा और कुछ नहीं होता है, वैसे इस जगत में केवल दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि इस जगत में मैं सुखी हूं, तो वो बहुत बड़ी मूर्खामी है, क्योंकि समुद्र में खड़ा रहकर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं पानी को नहीं चाहता हूं, मुझे पानी दिख नहीं रहा है, तो व्यक्ति मूर्ख है। वास्तव में इस जगत में रहने वाले सब लोग दुखी हैं। ये मैं नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। जगत बनाने वाला कह रहा है कि यह जगत दुखालय है, जगत में रहने वाले सब लोग दुखी हैं। भगवान इस बात को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार के कुछ मूढ़ लोग, कुछ अज्ञानी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अरे भाई हम तो सुखी हैं, हमारे पास गाड़ी बंगला धन नौकर चाकर पुत्र पत्नी सब कुछ है, हम कहां दुखी हैं। परंतु बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो भगवान की बात को आप समझ सकते हो। भगवान ने कहा है अर्जुन ये दुखालय जगत है, और आप अपने जीवन के ऊपर गौर से सोचो कि हमारे जीवन में दुख के अलावा और क्या हो रहा है। आप देखिए जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं ये सभी अवस्थाओं में केवल दुख ही दुख है। सबसे पहले व्यक्ति जब व्यक्ति का जन्म होता है, इस संसार में किसी भी मनुष्य को आना होता है तो उसे मां के गर्भ में गर्भ से वह जन्म लेता है। ऐसा कोई नहीं है जो डायरेक्ट ऊपर से गिरा हो। किसी भी व्यक्ति को जन्म लेना है तो मां के कोख में 9 महीने तक रहना पड़ता है। और देखिए जन्म लेने से पहले ही व्यक्ति को दुख मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जब बालक मां के गर्भ में होता है तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में वर्णन है कि उस बालक को बहुत बहुत प्रकार के दुख मिलते हैं। मां के गर्भ में बहुत कंजेस्टेड स्थिति होती है, बहुत छोटी सी स्थिति होती है, बहुत छोटी सी जगह में उस बालक को रहना होता है। और ऐसी जगह में जहां पर वो बालक हिल भी नहीं सकता है, मान लीजिए आपको एक छोटी सी पेटी में बंद कर दिया जाए, आप कितने समय तक रह सकते हो? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक। परंतु इतने छोटी सी जगह में उस बालक को 9-9 महीने तक रखा जाता है। इतना ही नहीं, ऐसी जगह पर जहां से गंदी हवा मल मूत्र पसार होकर जाता है, ऐसी जगह पर उस बालक को रखा जाता है। और मां जब तीखा खाती है, जब तीता खाती है, तो वह सारा प्रभाव उस बालक पर होता है, क्योंकि उस बालक की जो त्वचा होती है बहुत कोमल होती है, और जैसा मां का आहार होता है वैसे ही बालक की स्थिति होती है। और इतना ही नहीं, आज के वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रूव किया गया है इस बात को कि हमारे शरीर में कई प्रकार के जर्म्स हैं, कीड़े हैं। जब बालक गर्भ में होता है तो वह जर्म्स, वह कीड़े उसे बहुत काटते हैं, चुभते हैं, और इतना चुभते हैं, इतना कष्ट होता है उस बालक को, वो बालक हिल जाता है, दुखी होता है, दर्द होता है। भागवतम में वर्णन है जब मां के गर्भ में बालक होता है तब 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दुख का अनुभव होता है। ऐसी दुखी स्थिति में वो बालक बिल्कुल दुखी हो जाता है, परंतु फिर भी रो नहीं सकता है। आज देखिए, आज हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाए तो कोने में जाकर रोकर उस दुख को हम कम कर सकते हैं, हृदय हल्का हो सकता है। परंतु ऐसी स्थिति में उस बालक को रखा जाता है कि रोने का भी चांस नहीं मिलता है, रो भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वह बालक को गर्भ में रखा जाता है। अब देखिए, व्यक्ति संसार में आया नहीं है, जन्म लेने से पहले ही दुख प्रारंभ हो जाते हैं। कल्पना कीजिए जन्म लेने के बाद कितने दुख होंगे। तो मां के गर्भ में दुख होता है, और 9 महीने के बाद भगवान की कृपा से जब उस बालक का जन्म होता है, कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु आप देखिए, जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है? रोने की। वह रोता है, और रोने का अर्थ यह है कि वह जहां से आया है वहां से दुखी होकर आया है। तो वास्तव में वह बालक दुखी होकर रोते हुए जन्म लेता है, और उसी समय समाज वाले हंसते हैं, हमारे घर पर बालक का जन्म हुआ, ताली बजाते हैं और पेड़े और लड्डू बांटते हैं। हम लोग समाज समाज करते हैं, यह मेरा समाज, मेरा समाज। लेकिन इस जीव का इस समाज के साथ सर्वप्रथम अनुभव क्या है? यह जीव का जब जन्म हुआ तब बेचारा रो रहा था और समाज हंस रहा था। इस समाज के साथ सर्वप्रथम अनुभव। जन्म होता है और जन्म लेकर ही वह बालक बाल्य अवस्था में बहुत दुखी होता है। वास्तव में ये मैं किसी भगवान की और किसी और की कथा, राजा महाराजा की कथा नहीं कह रहा हूं, ये हमारी कथा कह रहा हूं। ये कोई दिव्य कथा नहीं है, ये अपनी कथा है, आत्म कथा। हम सब लोग इस प्रकार से दुखी होकर इस संसार में आए हैं और जन्म से सब लोग, जब बालक छोटा होता है, उनकी आयु जब छोटी होती है तो बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, परंतु बेचारा बोल नहीं सकता है, केवल रोता है। मां भी नहीं समझ पाती है कि इसे क्या चाहिए, ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, बस केवल रोना होता है और उस कष्ट को सहन करता है। बाल्य अवस्था में व्यक्ति बहुत दुखी होता है। इस संसार में जन्म अवस्था और बाल्य अवस्था केवल दुख दुखदायी है। और जब बाल्य अवस्था बीत जाती है, व्यक्ति धीरे 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 बड़ा होता है, तो जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उनके जीवन में रोग भी बड़े बड़े आने लगते हैं। इस संसार में कई प्रकार के रोग हमें लगते हैं, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, जॉन्डिस होता है, इत्यादि बहुत बहुत रोग है। और यह रोग वास्तव में दुख देने वाले होते हैं। कोई चाहता नहीं है कि यह रोग हमें आ जाए, यह रोग हमें लग जाए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले ही कहा, यह जगत दुखालय है, तो जीव को दुखी करने के लिए यह रोग आ जाते हैं। अब और रोगी जितना दुखी होता है इतना कोई नहीं होता है। अब देखो, वैसे तो हमारे मन में बहुत बहुत संकल्प होते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना कमाएंगे, इतना काम करेंगे, परंतु जैसे ही हमें रोग लग जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो सबसे पहले यह सब कुछ छोड़कर हम यह सोचते हैं कि सबसे पहले हम ठीक हो जाएं, क्योंकि रोग आता है तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। तो जन्म लेना दुख है, रोग आना भी बहुत बड़ा दुख है। और इतना ही नहीं, धीरे 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 करके जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है तो उसके जीवन में दुख और बढ़ने लगते हैं। शास्त्र में और जैसे हम दो प्रकार के दुख मैंने आपको गिनाए, जन्म और व्याधि, जन्म और रोग, और भी कई प्रकार के दुख है, उसे आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक कहा जाता है। आदि दैविक दुख का अर्थ है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख है जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं, देवताओं के द्वारा दुख। जैसे कुछ दिनों पहले सुनामी आ गई, समुद्र देवता वरुण देवता थोड़े से बढ़ गए, 3 मिनट में लाखों लोग मर गए, ये देवताओं के द्वारा दुख है। धरती माता थोड़ी सी हिल जाती है, धरती कंप हो जाता है तो बिल्डिंग के बिल्डिंग गिर जाते हैं। कुछ सालों पहले जब मैं बहुत छोटा था और यहीं प्रेमनगर में रहता था 5 नंबर में, तो इंद्रदेव कुपित क्रोधित हो गए थे इस केवल नगर में रहने वाले लोगों के ऊपर। कारण यही था कि लोग भक्ति नहीं करते थे, इसलिए इंद्रदेव ने ऐसी बारिश की और ऐसी बिजली भेजी, यहां का बिल्डिंग को तोड़ दिया। ठीक है, मतलब था ना ऐसा, कई लोग गिर गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए। तो ये देवताओं के द्वारा दुख है, न चाहते हुए भी कब ये पृथ्वी हिल जाए, कब सुनामी आ जाए, कब बिजली गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। तो हमारे जीवन में एक से एक दुख आते रहते हैं, देवताओं के द्वारा दुख। तत्पश्चात इस संसार में रहने वाले लोगों से भी बहुत दुख मिलता है, उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे हमारे समाज वाले हमारे अपने जितना दुख देते हैं उतना पाकिस्तान वाले नहीं देते हैं। आप सोचिए, घर पे बैठकर हम पाकिस्तान को हमारा दुश्मन मानते हैं, परंतु पाकिस्तान वाले उतना दुख नहीं देते हैं जितना हमारे समाज वाले ही हमें दुख देते हैं। और समाज में भी हमारी पत्नी और बच्चे जितना दुख देते हैं उतना पड़ोसी वाले नहीं देते हैं। आप सोचिए, एक दिन घर पे बैठकर सोचिएगा। और शास्त्र में तो यहां तक लिखा गया है कि पिछले जन्म में जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वह इस जन्म में पुत्र बनकर पैदा होता है। अब वह शत्रु इस जन्म में परेशान नहीं करेगा तो और क्या करेगा। समाज के द्वारा दुख मिलता है, समाज के लोग हमारे मुंह के सामने बहुत वाह वाह करते हैं, आप बहुत अच्छे हो प्रशंसा करते हैं, और जैसे ही हम चले जाते हैं तो हमारी पीठ के पीछे हमारी ही ईर्ष्या करते हैं, हमें गाली देते हैं। इसे आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है, समाज के द्वारा दुख। वास्तव में जब हम लोग संसार में हम कहते हैं कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, तो इस संसार के लोग कहते हैं कि यदि हम कृष्ण के भक्त बन गए तो समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले फिर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु देखिए, समाज वाले हमें क्या देते हैं। आप 1000 अच्छे कार्य करो, एक केवल बुरा कार्य हो गया तो समाज के लोग वे 1000 अच्छे कार्य किए हैं वह नहीं देखेंगे, एक बुरा हो गया है उसके सामने देखेंगे। समाज के लिए आप कुछ भी करो, दुख के अलावा कुछ नहीं देता है। अब देखिए समाज कैसा है, एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस दिन यह समाज हाथी के ऊपर बिठाएगा तो समझ लेना हाथी के पीछे पीछे गधा आ रहा है। ये समाज एक दिन हाथी के ऊपर तो दूसरे दिन गधे के ऊपर बिठाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये समाज कैसा है, आप यदि रास्ते से जा रहे हो, आप नीचे देखकर जा रहे हो तो समाज वाले कहेंगे कि लगता है कुछ गलत काम किया है, इसलिए नजर नीची है। समाज वालों की बात सुनकर आप अपनी आंख को ऊपर करके चलो तो वही समाज वाले कहेंगे देखो कितना अभिमान हो गया है, कितना अहंकारी हो गया है, ऊपर देखकर चलता है नीचे तो देखता ही नहीं। वही समाज की बात सुनकर आप सीधा देखकर चलो तो वही समाज के लोग कहेंगे देखो इसकी दृष्टि कितनी बिगड़ गई है, सभी लड़कियों के ऊपर स्त्रियों के ऊपर नजर डाल रहा है। उसी समाज की बात को सुनकर यदि आप अपनी आंखों को फोड़ दो तो वही समाज दूसरे दिन कहेगा कि किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है। यह है समाज, इससे ज्यादा समाज कुछ नहीं देता है। तो वास्तव में समाज के द्वारा दुख मिलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और समाज से भी अपने जो दुख देते हैं, कहते हैं चाणक्य पंडित जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे भारत वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान हो गए जिसका नाम था चाणक्य पंडित। उन्होंने नीति शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा है। चाणक्य पंडित अपनी नीति में कहते हैं कि शरीरे अरि प्रहरति, संसार के बड़े बड़े जो शत्रु है वह शत्रु इस शरीर पर वार करते हैं, और शरीर पर वार यदि किया गया तो हॉस्पिटलाइज होकर हॉस्पिटल में जाकर उसे हम ठीक कर सकते हैं। शत्रु शरीर पर वार करते हैं और वह जख्म ठीक हो जाते हैं, परंतु हमारे अपने जो स्वजन होते हैं वह शरीर पे नहीं, वह तो हृदय में वार करते हैं, और हृदय में जो वार किया हुआ है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे अपनों के द्वारा बहुत दुख मिलता है। अब देखो, इस संसार में जिस पुत्र को व्यक्ति पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं वही पुत्र अपने माता पिता को घर पर नहीं रखते, घर पर रखने को तैयार नहीं होते हैं। आज देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। आज के पुत्र, आज के लड़के बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जिस माता पिता ने पढ़ा लिखा कर भोजन खिला पिला कर बड़ा किया है, तपस्या त्याग करके, आजकल के बच्चे उसे माता पिता को निकाल देते हैं। होता क्या है, आजकल के माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे कपड़े देते हैं। जब अच्छा एजुकेशन देते हैं तो उसका विवाह भी अच्छे एजुकेशन वाली के साथ होना चाहिए। जब पढ़ी लिखी किसी लड़की के साथ विवाह करते हैं तो वो पढ़ी लिखी बहू घर पर आती है, कुछ दिन तक रहती है, फिर अपने पति देव से कहती है कि अब नाम लेकर बुलाती है। आजकल की औरत, आजकल की महिलाएं वास्तव में ये भी हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। एक आर्य वर्ष की नारी, भारत वर्ष की नारी के मुंह पर कभी अपने पति का नाम नहीं आना चाहिए, परंतु आज संस्कृति के ऊपर पानी फिर गया। आप देखिए इतिहास के पन्ने खोलकर देख लीजिए, बड़ी बड़ी स्त्रियां हो गई, भगवान की भक्त हो गई, एक आदर्श सीता या राधा रानी कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लिया। और क्या बात करूं, रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र की लीला में जब भगवान वनवास में थे और वनवास में राम लक्ष्मण और सीता जंगलों के रास्ते से जब जा रहे थे तो कई जंगलों में कई आदिवासी भील इत्यादि लोग मिलते थे। एक दिन की बात, भगवान श्री रामचंद्र एक ऐसे ही आदिवासियों के वहां पर रुक गए, रामायण में वर्णन है। तो आदिवासी जो पुरुष थे वह राम और लक्ष्मण को लेकर साथ में एक टोलकी में बैठे और एक और सारी स्त्रियां सीता को लेकर बैठी और सारी स्त्रियां सीता को पूछने लगी कि वास्तव में आप लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, इतना सुंदर इतना कोमल आपका शरीर है, बताओ आप कौन हो। और वह जितनी भी भीलनियां हैं वह सीता को बिठाकर कहती हैं कि देवी देवी आपके साथ ये जो दो पुरुष हैं वे कौन हैं। रामायण में वर्णन है सीता जी ने किस प्रकार से उत्तर दिया है, आज की महिलाओं को सीखने लायक है। सीता जी ने उस भीलनी जितनी भी स्त्रियां बैठी थी उन लोगों को कहा कि वो जो गोरे गोरे दिख रहे हैं, हाथ भी नहीं दिखाया केवल किया कि सामने वो गोरे गोरे दिख रहे हैं, वो मेरे देवर है लक्ष्मण है और उनके बाजू में जो सांवले हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि अपना अंचल ढंग कर, अपना पल्लू आगे बढ़ाकर और शर्मा करके सीता जी ने उस स्त्रियों को कहा कि उनके बाजू में जो बैठे हैं वो है, बस हो गया। ऐसा नहीं कहा कि हमारे मिस्टर है या ये कीर्ति है या ये समीर बैठे हैं, नहीं नहीं, आर्य वर्ष की नारी के ऊपर मुख पे ऊपर कभी अपने पति का नाम आज तक नहीं आया है। तो मैं ये कह रहा था कि माता पिता अपने पुत्र को बहुत पढ़ा लिखा कर बड़े करते हैं और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को घर पे लेकर आते हैं और अपने मिस्टर को कहती हैं, अपने पति को कहती हैं कि देखो पतिदेव, ये जो आपके माता पिता जो हैं वो बहुत पुराने जमाने के हैं, इनके विचार, इनके जो भी विचार है ये सब पुराने जमाने के हैं, हम इनके साथ सेट नहीं हो पाएंगे। एक काम करो, हम ये घर छोड़कर नए घर में चले जाते हैं, या एक काम करो अपने माता पिता को इस घर से बाहर निकाल दो। बस माता पिता यह बात को सोचकर समझकर वे स्वयं समझकर उस घर से निकल जाते हैं। निश्चित तो इसी प्रकार इस संसार में प्रायः पुत्र अपने माता पिता को दुखी करते हैं, अपने स्वजन ही दुखी करते हैं, तो इसे आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है। तत्पश्चात आदि आध्यात्मिक क्लेश मिलता है। आदि आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ होता है मन के द्वारा दुख, हमारा अपना मन ही हमें बहुत दुखी कर रहा है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना न जीता हुआ मन है। मन में बहुत बहुत कामनाएं उठती हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे, आज इतना लाख कमा लेंगे, परंतु वह होता नहीं है। और जैसे ही मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो मन के द्वारा दुख मिलता है, इस प्रकार से दुख मिलते 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 व्यक्ति के जीवन का लंबा समय बीत जाता है और बुढ़ापा आ जाता है। और जब बूढ़ा बन जाता है तो आप सब लोग जानते हो बूढ़ा व्यक्ति कितना दुखी होता है। बूढ़ा शास्त्र में वर्णन है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो दृष्टिर नश्यते, उसकी आंख देखना बंद कर देती है। बर्द तेज बधिरता, कान सुनना बंद कर दे देते हैं। दशनम विहीनम, दांत एक एक करके गिर जाते हैं। वाक्यम नैव शुणोति बांधव जना, उनके रिश्तेदार उनके घर में रहने वाले अपने लोग ही उनकी बात को सुनते नहीं है। इस प्रकार से वो बूढ़ा बहुत बहुत परेशान होता है। उनके मन में बहुत कामनाएं होती है कि मैं यह कर लू, यह खा लू, यह पी लू, परंतु बेचारे को दांत नहीं है। खाने की बहुत इच्छा है, पूरा जीवन धन कमाने के लिए लगा दिया। उनके पास धन बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है, भोजन सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन है, बहुत सुंदर 56 प्रकार की मिठाई उनके सामने है, परंतु बेचारे को डायबिटीज हो गया है। बूढ़े की, आज के बूढ़ों की यह हालत है। करना बहुत चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते। बुढ़ापा बहुत बड़ा दुखदाई है। इस संसार में लोग सब कुछ चाहते हैं परंतु बुढ़ापा नहीं चाहते। इसलिए देखो, किसी व्यक्ति को थोड़ा भी बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे की निशानी क्या है, बाल सफेद हो जाते हैं। तो बाल जैसे ही सफेद हो जाते हैं तो बुढ़ापे को छिपाने के लिए उसे काले करवा देते हैं। बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है। बाल जब गिर जाते हैं तो वीक बनाकर पहनते हैं, परंतु बुढ़ापे को कितना भी छिपाने का प्रयास करो ये कभी छिपेगा नहीं, तो आकर ही रहेगा। एक ना एक दिन हम सब बूढ़े होने वाले हैं, इसलिए इस बात के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। तो यह बुढ़ापा भी बहुत दुखदाई है, कष्टदाई है। यह बुढ़ापा दुख देने वाला है, और बुढ़ापे से भी सबसे बड़ा इस संसार का दुख है वो है मृत्यु। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा दुख है और मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है। इस जगत में और सब वस्तु सत्य है या नहीं, परंतु मृत्यु सनातन सत्य है, क्योंकि जातस यही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति मृत्यु से बचने के कितने कितने उपाय कर ले, परंतु मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। इस संसार में एक से एक राजा महाराजा आए, मृत्यु से बचने का बहुत बहुत प्रयास किए, परंतु कोई नहीं बच सका। कंस आया और आकाशवाणी थी कि आठवां पुत्र तेरी हत्या करेगा। बहुत प्रयास किया बचने के लिए, परंतु नहीं बच पाया। इतना ही नहीं, एक कवि तो यहां तक कहते हैं कि सहस्त्र बाहु दश वदन आद नीतो बचे न काल वलीते, हम करी धम धाम सवारे अंत चले उठ रीत। एक से एक राजा महाराजा, दस दस सिर वाले राजा आए। हमारे पास केवल एक मुंडी है, एक सिर है, दस सिर वाले राजा आए, दस बदन, परंतु ऐसे दस सिर वाला रावण भी मृत्यु से नहीं बच सका। और सहस्त्र बाहु, इस संसार में हजारों भुजा वाले वीर आ गए, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से नहीं बच सके। हम करी धम धाम सवारे, ये मैं हूं और ये मेरी है। ये करते करते उन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत संपत्ति एकत्रित की, परंतु वह धन संपत्ति उनके पुत्र और परिजन उस व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा सके। इस संसार में धन पुत्र पत्नी आपको चाहे और कुछ दे सकती हो, परंतु मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। आप देखते हो समाज में जब व्यक्ति मरण शैया पर पड़ा है, इस दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी, दुनिया का सारा धन एकत्रित करके किसी को दिया जाए, एक से एक डॉक्टर को बुलाकर कहा जाए कि इसकी मृत्यु से केवल एक घंटा बढ़ा दीजिए, वह एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस जगत का सबसे बड़ा दुख मृत्यु है और मृत्यु के समय व्यक्ति बहुत दुखी होता है। शास्त्र में वर्णन है कि जब मृत्यु का समय निकट आता है तो एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे उतने दुख और दर्द का अनुभव होता है। 1000 बिच्छू का डंक, परंतु फिर भी लोग इस मृत्यु के बारे में नहीं सोचते हैं। रात दिन सोचते रहते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, रात दिन सोचते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, रात दिन सोचते हैं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी विवाह करने के लिए। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि आप करोड़पति बनो या न बनो, आप अमेरिका जाओ या न जाओ, आपको अच्छी पत्नी मिले या न मिले, परंतु मृत्यु जरूर मिलेगी। जो चीज जरूर मिलने वाली है उसके लिए हम थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, और जो कभी नहीं मिलने वाला है उसके लिए रात दिन सोचते रहते हैं। संसार में बहुत बड़ा आश्चर्य है, संसार में सब लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन मरना है। हमसे जो बड़े हैं वो मर गए, छोटे मर गए, आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग मर गए, परंतु मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा सोचते हैं। हमें भी यह सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन मरेंगे और मृत्यु कभी भी आ सकती है। घर पे जाओ, शाम को रात को सो जाओ, कल सुबह उठो या ना उठो कोई भरोसा नहीं, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी बम फूट सकता है, कभी भी धरती कंप हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो ये संसार में कई प्रकार के दुख जिसका मैंने आपको वर्णन किया, सब इस दुखों को लेकर सब लोग दुखी है। और यह दुख कब तक रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद यह दुख समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु होती है तो व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, पुनर्जन्म, और दूसरा जन्म किसी बैल के, गधे के, बिल्ली के शरीर में होता है, और 84 लाख के चक्कर काटने के बाद वो मनुष्य बनता है, और मनुष्य बनकर भी वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि, दैविक आदि, भौतिक आदि, आध्यात्मिक, ये सभी प्रकार के दुख उसे मिलते रहते हैं। तो प्रश्न होता है कि इस दुख से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि इस जगत में रहकर मुझे सुखी होना है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समुद्र के बीच में रहकर कोई पानी से अलग नहीं हो सकता है, वैसे यह भौतिक जगत में रहकर कोई दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि दुखों से मुक्त होना है तो इस जगत को छोड़ना होगा, और इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत, भगवान के पास जाना होगा। जब तक जीव भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक वह सुखी नहीं होता है। इसलिए वास्तव में यदि सुखी होना है तो भगवान की प्राप्ति करनी होगी। भगवान के पास जाकर व्यक्ति सुखी हो सकता है, भगवान की प्राप्ति करके सुखी हो सकता है, और भगवान के पास जाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं। कुछ लोगों की इच्छा हो रही होगी कि वास्तव में इस संसार में दुख है और इस दुखों से मुक्त होना है, तो दुखों से मुक्त होने के लिए भगवत प्राप्ति की आवश्यकता है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना होगा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान प्राप्त होते हैं और हम यह दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और भक्ति में एक ऐसा गुण है, भक्ति करने से मृत्यु के बाद तो हम सुखी हो जाते हैं, भक्ति करने से भगवान के पास जाकर हम सुखी रहेंगे, परंतु भक्ति में एक ऐसा गुण है कि भक्ति करते करते भी व्यक्ति सुखी रहेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, सागर में डूब रहा है, संसार सागर होई, ये संसार सागर के समान है और सब लोग इस सागर में, इस दुख रूपी सागर में डूब रहे हैं, परंतु समुद्र में डूबते डूबते यदि आपको एक नाव मिल जाए और इस नाव के ऊपर सवार हो जाओ और सवार होकर आप उस नाव को ढोने लगो तो समुद्र से बच जाओगे और धीरे धीरे किनारे पर लग जाओगे। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में डूबते डूबते यदि आपने भक्ति रूपी नाव को पकड़ ली, आप भक्ति करने लगे और भक्ति करते करते जब आप किनारे पर पहुंच जाओगे तो निश्चित रूप से किनारे पर पहुंचने पर आप सुखी हो जाओगे, और इतना ही नहीं नाव में बैठने से भी आप सुखी हो जाओगे। संसार सागर है, दुख रूपी जगत है, इस दुख रूपी जगत में रहकर भी यदि सुखी होना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। और भगवान की भक्ति में इतना गुण है, भगवान की भक्ति करने से वर्तमान समय में भी हम सुखी रहते हैं और भविष्य काल में मृत्यु के बाद भी हम सुखी हो जाते हैं। परंतु भक्ति के अलावा हम जो कार्य कर रहे हैं, इस हमारे कार्य में ऐसा है कि हम वर्तमान में भी दुखी हैं और यह सब पाप करने के बाद भविष्य में भी हम दुखी होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र को समझकर भगवत गीता के उपदेश को धारण करके यह निर्णय पर पहुंचता है कि हमें ऐसा कार्य करना है जिससे हम वर्तमान समय में भी सुखी हो जाए और आने वाले भविष्य में भी हम सुखी हो जाए, मृत्यु के बाद भी हम सुखी हो जाए। यदि वर्तमान और मृत्यु के बाद सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी होगी। अब आप सबके मन में प्रश्न हो रहा होगा, भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? क्योंकि भक्ति एक ऐसा शब्द है, सुनकर आपको लगता होगा कि ये बस सफेद कपड़े पहनकर मंदिर में बैठ जाना, यही भक्ति है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति बहुत आसान चीज है। भक्ति कोई बहुत विशेष वस्तु नहीं है, भक्ति सब लोग कर सकते हैं। और भक्ति का अर्थ यह है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, इसे भक्ति कहते हैं। और इसे और यदि क्लियर किया जाए तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, यही है सबसे बड़ी भक्ति। भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना, इसे ही भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति जितना भगवान का नाम लेता है, जितना भगवान की कथा सुनता है, वो उतना सुखी हो जाता है। आप देखेंगे हमारे इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, भले वे झोपड़ी में रह रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, उसके कर्म के वश वे बहुत गरीब है, लेकिन देखिए सबके चेहरे प्रसन्न है, सुखी है, क्योंकि उनके पास भक्ति है। और अन्य जो करोड़ करोड़ पति है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, एसी में बैठते हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, परंतु एसी के बीच में भी वह जल रहे हैं, क्योंकि धन कोई सुख का साधन नहीं है, भोजन सुख का साधन नहीं है। सुखी यदि होना चाहते हैं तो भक्ति करनी होगी, भगवान का नाम लेना होगा। भगवान का नाम लेने से हम सुखी हो सकते हैं। और भगवान का नाम लेने के बाद तो जैसे मैंने कहा मृत्यु के बाद तो व्यक्ति सुखी होगा ही, परंतु भगवान के नाम में इतना सुख है, भगवान के नाम में इतना आनंद है। अब देखिए हम यहां पर बैठे हैं, डेढ़ घंटा हो गया, लेकिन आपको लगा डेढ़ घंटा कैसे बीत गया? ये है भगवान की कथा में रस, भगवान के नाम का आनंद। हमारे एक भक्त तो बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान के नाम में जितना आनंद है उतना आनंद और कहीं भी नहीं है। कहते हैं वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो आनंद भगवान के धाम में है, जो आनंद भगवान के पास है, वह आनंद मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। संसार के लोग मुक्ति चाहते हैं, सायुज सामीप्य सालोक्य साष्टी इत्यादि। जो आनंद भगवान के धाम में है वो मुक्ति के मंदिर में नहीं है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में। जितना सुख भगवान श्री कृष्ण के नाम में है उतना सुख और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हैं, यदि भविष्य में सुखी होना चाहते हैं, वर्तमान में सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। सब लोग भगवान का नाम लेते हुए, हम तो यहां पर कुछ मिनटों में यहां से चले जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, परंतु भगवान का नाम आपसे अलग नहीं होगा। मृत्यु पर्यंत इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी साथ देने वाला यदि कोई है तो वह भगवान का नाम। आपके पास करोड़ों रुपये हैं, अच्छे पुत्र हैं, पत्नी है, लेकिन सबको यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे, परंतु आपके साथ आने वाली संपत्ति यदि कोई है तो वह भगवान का नाम। इसलिए हम सबको भगवान के नाम का गान करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसलिए आइए सब लोग कुछ देर भगवान के नाम का कीर्तन करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम।
सभी लोग गाइए प्रेम से, प्रवचन समाप्त नहीं हुआ है।
हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
इस प्रकार प्रकार से भगवान का नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा जीवन का कार्य है। यदि जीवन में कुछ कमाना चाहते हो, कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, इसी से ही हमारा जीवन पवित्र होगा। कुछ लोग मन में सोचते होंगे हमारे जीवन में बहुत गलत आदतें हैं, हमारे मन में बहुत गलत गलत विचार हैं, उनके लिए कुछ योग करना होगा, कुछ साधना इत्यादि। नहीं नहीं, कलयुग में यदि शुद्ध होना चाहते हैं तो केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम। एतस्मात् परम कश्चित् मनःशुद्धयते न विद्यते। शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए, जीवन को शुद्ध करने के लिए आप कितना भी तपस्या करो, दान करो, हवन करो, यज्ञ करो, यह शुद्ध नहीं होगा। जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे, तब तक यह जीवन पवित्र नहीं होगा। वास्तव में जीवन को पवित्र करना चाहते हैं हम, हमारी मृत्यु को संवारना चाहते हैं हम, हमारी मृत्यु को सुधारना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान की कथा सुनिए। भगवान का नाम लेने के लिए क्या विधि है? हमारे कई सारे इस प्रकार के प्रवचन कार्यक्रम विरार से लेकर चर्च गेट तक चलते हैं, तो इस कार्यक्रम में आप आइए, भाग लीजिए। उस कार्यक्रम में प्रवचनों के द्वारा आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा क्या विधि है, क्योंकि एक घंटे में हम आपको सब कुछ तो नहीं सिखा सकते हैं। शास्त्र अपार है, अनंत है, तो सार यह है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और भी आप इस बात को गहराई से जानना चाहते हो, और भी आप शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे रेगुलर प्रोग्राम कई जगह पर चलते हैं, आप उसमें आ सकते हो। हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आप पधारिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। प्रायः बोरीवली में हमारे दो प्रोग्राम चलते हैं, मंगलवार और शुक्रवार को। मंगलवार को जो कार्यक्रम चलता है वह शिम्पोली रोड गोखले स्कूल के हॉल में प्रति मंगलवार शाम को 8:30 से 10 बजे तक होता है, और आपके लिए सुटेबल जगह यहाँ पर ही आपके बाजू में गोकुल होटल के पीछे एसी इंटरनेशनल स्कूल है, उस एसी इंटरनेशनल स्कूल के श्रीजी हॉल में प्रति शुक्रवार को हमारा इसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर गीता और भागवत का ज्ञान दिया जाता है। तो आप शुक्रवार को एसी इंटरनेशनल स्कूल श्रीजी हॉल में शाम को 8:30 से 10 बजे तक के कार्यक्रम में पधार सकते हैं। और भी मलाड, कांदीवली, बांद्रा, चन्नी रोड, यहाँ पर मीरा रोड, दहीसर, भायंदर, विरार, ये सभी जगह पर हमारे कार्यक्रम चलते हैं। जिन जिन लोगों को जिस कार्यक्रम में आना है, हमारे पास उसके हैंड नोट्स हैं, एड्रेस हैं, आप सब लोग उसे ले लीजिए, और जब भी आना चाहते हो तो वहां पर आप आ सकते हैं। ध्यान रहिए, ध्यान रहे, हम यह कार्य कर रहे हैं केवल आपके लाभ के लिए। इसमें आपसे कुछ धन की आशा है, आपसे कुछ हम लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कार्य केवल देना है। जैसे कोई, यदि वास्तव में कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो वह दूसरे के अज्ञान को देखकर ज्ञान बांटना चाहता है, वैसे हम देखते हैं संसार के लोग अज्ञान के कारण दुखी हैं। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को गीता, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। बस ये एक ही हमारी इच्छा और अभिलाषा है। इसमें हमारी किसी से कोई लेने की भावना नहीं है कि हम आपसे कई सारा धन ले लेंगे या मंदिर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हमारे प्रोग्राम में आइए, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल आइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। इस ज्ञान को यदि आप समझो, अपनी बुद्धि में ठीक हो जाए, तो इसे अपने जीवन में पालन कीजिए। और यदि आप इसे नहीं समझ सकते हो, यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हो, तो फिर आप भले और हम भले। हरे कृष्णा। ये जो एक घंटा प्रवचन हुआ, और भी भक्ति में प्रगति करने के लिए किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न, मान लीजिए मैंने जो प्रवचन किया उसमें कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु जी आप झूठ बोल रहे हैं, या किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई भी व्यक्ति अपना अभिप्राय, अपना प्रश्न पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? यदि आपके पास प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और आपको समझ में यदि आ गया तो आपको सब कुछ स्वीकार करना होगा। तब मैं मान रहा हूं कि कल से लोग भगवान का नाम लेना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।